या गोपी जाना बल्लभा गिरिवर धारी जाया गोपी जाना बल्लभा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय जय नित्यानंद श्री सोमदेव श्री भक्त स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय जय नित्यानंद श्री भक्त ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय संगत भक्तविंद की जय श्रीमद भागवत गंधराज की जय निताय गौर विमानंदे हरि हरि बोल। नाम श्रेष्ठ मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तिष्ठग्रजं मरुपरिं मातृं गोष्ठवाटिं राधा कुंडा गिरिवर महो राधिका माधवा संप्त पचुतृपयां श्रीगुरु तस्मी वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यव पैता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः भक्ता विहीनापराधलख्य क्षिप्रादिकमादितरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते सुख निविदचता सद्बुद्ध सैन भाव जीतुर्चिला कृष्ण सारस्वतीम वैतन दुकृपांगदीपं पुराण तमखल ब्रजमीनांग वशसोनु नतो यस्मिन् भवे भव यथा भक्ति पाद स्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथ स्मृत प्रभु नाम संकीर्तन जैश सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समनस्तु तं नमामि हरि परम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रयेशवदेशो नित्यं भागवत सेवयां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी श्रीमद्भागवतम नमः स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 20 चिकीर्षितम् ते किम् इदम् पते तया त प्रलंबितः लोकनमस्कृतः मुने जातं जराग्रस्तं असति असनमतं विहाय जारं भजसे अमुं अद्धगम् किकीर्षितं ते किमिदं प्रतिष्ठया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि जत्तं जराग्रस्तमसत्यसनमतं विहाय जारं भजसे अमुमद्धगम् किकीर्षितं ते किमिदं प्रतिष्ठया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि जत्तं जराग्रस्तमसद्यसनमतं विहाय जारं भजसे अमुद्धगम् किकीर्षितं ते किमिदं प्रतिष्ठया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि जत्तं जराग्रस्तमसद्यसनमतं विहाय जारं भजसे अमुद्धगम् कीर्षितं तुम जो करना चाहती हो ते तुम्हारा किम इदम वह क्या है, पति अपना पति, तया तुम्हारे द्वारा प्रलंबित ठगा गया, लोक नमस्कृतम जिसका सभी लोग आदर करते हैं, महा मुनि महान साधु, यत क्योंकि तम तुम जराग्रस्तम अत्यंत वृद्ध एवं अशक्त असते हे दुष्ट लड़की, आसनमतम आकर्षक बिहाज छोड़कर चारम पार्वती धृष्ट धृष्ट भजते स्वीकार किया है, अमोम इस व्यक्ति को अद्भगम जो भिखारी के तुल्य है। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, हे दुष्ट लड़की, तुम वह क्या करना चाहती थी, तुम अपने अत्यंत सम्मानीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उससे वृद्ध रोगग्रस्तता अनाकर्ष होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है जो भिक्षुक जैसे पतित होता है। तात्पर्य, इससे वैदिक संस्कृति का महत्ता झलकती है। परिस्थिति व सुकन्या को ऐसा प्रति दिया गया जो उसके लिए वृद्ध था, क्योंकि चैवन मणि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतएव वो निश्चित रूप से राजा सरजाजी के सुंदर पुत्री के अनुरूप न थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वह अपने पति का आज्ञाकारिणी बने रहे। अतएव जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्य वह तुरंत सुंदर था तो भी उसने तुरंत ही उसे असती कहकर धुतकारा, क्योंकि उसने वह कल्पना कर ली कि उनकी पुत्री ने अपने पति को रहते किसी अन्य को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदरपूर्वक उसकी सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि वो अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे और दूसरा पति कर ले। वैदिक संस्कृति के वृद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे पति मानकर उसकी आज्ञाकारिणी बनना और सती रहना होता है। इसलिए राजा सरजाति सुकन्या की बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित थे। गृहस्थ लीला, यहाँ पर एक बाप अपना बेटी को डांट रहे हैं, तुमने दूसरा पति स्वीकार क्यों किया। चैतन्य चरितमृत में एक बाप अपना बेटी को बोल रहा है तुम तुम्हारा पति को छोड़ दो, ये श्रीमद् भागवतम है और वो चैतन्य चरितमृत है। इसमें पिताजी देखा तो देख करके बोले तुमने क्या कर दिया, जिससे तुम्हारा विवाह हुआ था उसको तुम छोड़ करके दूसरे का शादी क्यों कर लिया। और वहां पर कह रहे हैं तुम ऐसा पति को छोड़ दो जो कोई काम का नहीं है। दोनों जायगा में दो प्रकार परिस्थितियां हैं। राजा सरजाति इसका कारण अपना किए हुए कर्मों का फल का भोग सबको ही करना पड़ता है, कोई नहीं बांध सकता है। कर्माणि निर्दधति किंतु जो भक्ति भाजां, भक्ति जो करता है वो बांध सकता है। जो भक्ति जो करता है, ये ख्याल रखो, भक्ति किसे कहते हैं ये भी जानना आवश्यक है। सर्वोपाधि विनुर्मुक्त तत्परेत्र निर्मिलम ऋषिकेन ऋषिकसं सेवनं भक्ति रुच्यते, ये भक्ति का सूत्र है। समस्त उपाधि से मुक्त, उपाधि बहुत सारे हैं संसार में, तो जितना सारे वर्ण उपाधि है, आश्रमगत उपाधि है और पांडित्यगत उपाधि है, सुंदर में उपाधि है, बहुत सारे उपाधि है, ये समस्त उपाधि से जब मुक्त होगा, मुक्त कैसे होगा? समझ लो कोई व्यक्ति सुंदर है, वो अपना बॉडी को काट पीट के खराब कर देगा तो सुंदर हो जाएगा, तो उपाधि त्याग हो जाएगा। बोले हमारा शरीर सुंदर था, इसे मैं काट कूट के पेंट उंट लगा के बेकार कर दिया, हमारा उपाधि त्याग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस परिस्थिति का जो फायदा मिलता है, कोई अगर सुंदर है उसको बहुत सारा फायदा मिलता है, तो उस फायदा को वो स्वीकार नहीं करता तो भी उपाधि मुक्त होता है, उसको आज व्यक्ति निर्मल होगा। और उस निर्मल हृदय में, अंतकरण में जो भगवान का सेवा करेगा तो भी भक्ति कहलाएगा। ये वर्ण आश्रम ये कुछ काम का नहीं है। अगर ये काम का होता तो महाप्रभु जय श्री श्री गुरु गौरांग गणधार की जय जगन्नाथ भगवान सनातन सिख हम एक ही कहते थे, मदभक्त सपत प्रिय। मेरा भक्त अगर चंडाल भी है तो मेरा प्रिय है। वो बोला महाप्रभु जी, मेरा भक्त ब्राह्मण हमारा प्रिय है। नमेश प्रिय चतुर्वेदी, चौबे ब्राह्मण, चार वेद को पंडित तो युक्त ब्राह्मण हमारा प्रिय नहीं, अगर मेरा भक्त नहीं है तो। लेकिन अगर चंडाल भी मेरा भक्त है तो मेरा प्रिय है। तो कर्माणि निर्दहति, कोई अगर सोचे हम तो भक्त बन गया तो हमारा कर्म का दहन हो जाएगा, है भक्त बनने के बाद अवश्य होगा। लेकिन भक्ति के जो परिभाषा है उस परिभाषा में युक्त होकर के भक्त बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। मैं तो क्या बोलता है, मन में कला खाना पेट नहीं भरेगा। उसी प्रकार भक्ति करना पड़ेगा जिस भक्तों की द्वारा भगवान भी आकर्षण हो जाएगा तभी। तो यहां अपना क्यों है कर्मफल, अगर सुकन्या उस बोलमिक का गर्त में जो लाइट देखा दे उसको अगर नहीं बीनता था तो उसको ये हाल नहीं होता था। ये उसका कर्मफल है, उन्होंने गलत काम किया जिसका फलस्वरूप उनको एक बूढ़ा का सा शरीर होना पड़ा, ब्याह करना पड़ा मजबूरी। कोई चाहते हैं जो हम कोई वृद्धों के साथ शादी करें? दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। सब लोग, सब पति लोग, पत्नी लोग चाहते हैं हमारा पति युवा बने रहे, और सब पति लोग चाहते हैं हमारा पत्नी भी युवा बने रहे। और इस युवा का वेरिफिकेशन कितना सारा एडवाइज आ गया, ऐसा है क्रीम बोलता है ये क्रीम लगाओ 10 साल तक आप बुढ़ापा नहीं आएगा, वो बुढ़ापा को पीछे धकल सकते हो एक क्रीम लगाने से। आओ कोई एडवाइज आता है अगर खाया जाए रोज 2 चम्मच करके तो बाल भी नहीं पकेगा आपको, क्या बोलता है, बॉडी में झुरिया भी नहीं गिरेगा, च्यवन प्राश, ये च्यवन मुनि का नाम पे निकला है। सही है अगर उस पर बनाया जाए तो, ऐसा नहीं है ऐसा हो। चलो यहाँ क्या किया, ये लोग अश्विनी कुमार ने हरद में नहला दिया, और हरद में जैसे नहलाया वैसे युवक बन गया। लेकिन एक कृत्रिम उपाय नहीं, इन्होंने उनसे अनुरोध किया। अभी भी अगर कोई बूढ़ा जाके क्या बोलता है प्लास्टिक सर्जरी, उसमें अगर जाए हमारे झुरिया थोड़ा निकाल दो, निकाल के सही कर देगा, नाक थोड़ा मोटा है उसको एकदम बराबर बना दो, वो काट पीट के बराबर कर देगा। अब किसी बच्चों का नाम मत लो, कोई रिकॉर्ड करेगा तो फांस जाओगे। तो ये सब उसी जमाने का देन है, लेकिन अभी थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति हो गया, उस समय शास्त्र युक्त युक्त था। सही, सुकन्या अपना कर्मों के द्वारा उन्होंने कोई विरोध नहीं कर पाया। आजकल तुरंत विरोध करता है, नहीं हम उससे शादी नहीं कर सकते, ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसा ही रह जाएंगे। लेकिन सुकन्या ने भी बोल सकता था, लेकिन उन्होंने कर्म इस प्रकार का जो बोलने का हिम्मत में ही जुटा पाया, मजबूरन उसको शादी करना पड़ा। क्या बोलो इसी से। और उनको मालूम था मेरा पोती बहुत क्रोधी है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार आचरण किया जिसका पोति का दोबारा क्रोध उत्पन्न ना हो, इसको बोलते पतिव्रता। यही जब उस हद से नहा के बाहर आया तो तीनों एक जैसे हो गया। अभी क्या बोलेगा, अभी शादी किससे करें? अभी साधारण तो क्या बोला, तीनों तो एक जैसे देखने में क्या फर्क पड़ता है, शादी किसी से भी कर लिया जाए। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अश्विनी कुमार से मांगा, बोला हमारा पति का पहचान करा दो, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। तो उनको यह सत्यता देख करके उन्हें खुश हो गया। चाणक्य नीति क्या कहते हैं, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत न ब्रुआत सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये चाणक्य नीति में कहते हैं। सत्य अगर अप्रिय है तो नहीं बताना चाहिए। जैसे किसी का पिताजी अगर मर गया, माँ मर गया, बेटा मर गया, बहू मर गया, तुरंत तो मैसेज नहीं देना क्या भाई तुम्हारा वो मर गया। अप्रिय सत्य है उसको घुमा फिरा के बोलना पड़ेगा, तुम्हारे घर से कोई फोन आया था ऐसा 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 कुछ, बस बाद में समझ जाएगा कुछ हो गया, तो एक बार हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा अप्रिय सत्य कभी मत बोला करो। तो यहां उन्होंने जब उनका शरण, तो उन्होंने अपना पोती को देखा करके चला गया। अभी ससुर जी और इसका बाप आया, सुकन्या का पिताजी और त्यवन मुनि का ससुर जी आके जब देखा तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि तो मुनि नमस्कृत होता है। रचना महान मुनि के साथ तुम्हारा मैंने शादी दिया था, तुम कुछ भी मांग सकते थे उनसे, बहुत कुछ पा सकते थे तुम उस पोती सेवा के द्वारा, जैसे देवी होती उनको प्राप्त हुआ था। जब कर्दम ऋषि तपस्या किया था तो क्या हुआ, तो भी बुग्गा हो गया था, लेकिन फिर भी मनु महाराज ने अपना पुत्री का शादी दिया उनका साथ। आज देवहूति इस प्रकार सेवा किया जिसके सेवा के कारण प्रसन्न होकर के उन्होंने भी इस प्रकार वही हरद बना करके सुना ला के एकदम 16 साल का लड़की बना दिया और खुद भी ऐसे बन गया। तो पोती सेवा के द्वारा व्यक्ति नॉट व्यक्ति मतलब पत्नी बहुत कुछ पा सकता है। नहीं पति भी उसका पुष्प करने वाला दारू पीने वाला पति हो तो क्या मिलने वाला, दूसरा डांडा ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। उस पर पति भी होना चाहिए। यहां लिखते हैं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी भी अपना पति को त्याग नहीं करना चाहिए। आजकल पति त्याग का फैशन बन गया, पति लोग पत्नी को इतना जल्दी त्याग नहीं कर जितना पत्नी लोग पति को जल्दी त्याग कर देते हैं। फटाफट जैसे मार्केट से मिला उठा के ले लिया, दो चार साल रख लिया साथ में, रिजेक्ट। फिर दूसरा को लिया उठाया, दो चार साल साथ में रह गया, रिजेक्ट। ये फैशन हो गया आजकल। किस अवस्था में पोति को त्याग करना चाहिए, जो विधि दिया गया है, और किस अवस्था में पोतनी को त्याग करना चाहिए, दोनों विधि है। मनुसंवेदनक विधि दिया गया है और एक विधि दिया गया है आपका शिशि में। जब सार्वभौम भट्टाचार्य घर में महाप्रभु भोजन कर रहे थे, बहुत सारे अन्न दिया था खाने के लिए महाप्रभु को, तीन मान राइस क्या दिया था उसको, उसी हिसाब से व्यंजन महाप्रभु नहीं खा रहे थे। बोले सन्यासी के लिए भिक्षु नहीं है, अगर सन्यासी इतना सब खाएगा तो लोग बोलेगा उपहास करेगा, तो हमें उपहास ही तो कर्म नहीं करना चाहिए। लोग हमें देख के टिटकारी मारे, अरे क्या भक्त को देखना, इसमें क्या होता है, वैष्णव समाज का अपमान होता है, हमारा अपमान नहीं होता है। हम हमारा अपमान कैसे, हम तो अपमान स्वीकार ही नहीं करते हैं, ये हमारा वजह से पूरा वैष्णव समाज का अपमान होता है। इसलिए हमें इस प्रकार कर्म नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा पूरा वैष्णव समाज का अवमानना हो। ये पहले शिक्षा। तो वहां ये सब जो खा रहे थे महाप्रभु, तो अमोघ ने आके देखा बोला सन्यासी इतना खाएगा, ये सन्यासी कहाँ का है, इतना खाने वाला सन्यासी होता है क्या? ये बोला जैसे सार्वभौम पीछे देखा तो भागा, डांडा लेके गया, लेकिन मिला नहीं, आके बहुत धिक्कार दिया अपने आप को, बोला साकी रांडी हो, साटी का पत्नी था, पोती था उमोग, साटी माँ साटी को बोलो वो अपना जो सिंदूर वगैरह सब पहुंच दे, कोई जरूरी नहीं है ऐसा पति का साथ रहने का। तो वहां पर भक्ति सिद्धांत सुधाकर अनुभाष्य में लिखते हैं कि किस अवस्था में पति को त्यागना चाहिए। अगर पत्नी को पारमार्थिक जगत में उन्नत तो नहीं कर पाएगा बा, ये तो नॉर्मल चीज है, वो अगर क्या कहते हैं उसमें भक्त भगवान और भक्ति में विद्वेष है तो ताग सकते हो, नहीं तो तागने का अधिकार नहीं है। भक्त में विद्वेष करते हैं, भक्ति में विद्वेष करते हैं, भगवान में विद्वेष करते हैं, ऐसा अगर पति हो बा ऐसा अगर पत्नी हो तो दोनों को ताग दिया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है, देखिए पत्नी भक्ति कर रहा है, पोति इसमें बाधा नहीं दे रहा है, लेकिन पोती भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो वहां पर तागने का कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर अगर तागने मेरा पोति भक्त नहीं हम उसको ताग देंगे तो बेश्या कहा जाएगा, उस पर तागना क्योंकि तुम्हारा तो बाधा नहीं दे रहा है तो तुम्हारे तागने का अधिकार नहीं है। पोतनी भी पोती भी अगर ऐसा है, पोती भोजन कर रहे हैं, पोतनी सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन उसमें बाधा नहीं दे रहा है, झगड़ा झांटी ऐसा ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ठीक है कर रहा है, कर हमसे नहीं हो रहा वो कर रहा है ठीक है, उस जगह में पोती को भी पोतनी को तागना नहीं, हमारा पोतनी भक्त ना उसको ताग के दूसरा पोतनी ले लूं जो भक्त है नहीं, क्योंकि ये दोनों का भक्त बनने का चांसेस है, क्योंकि ये दोनों को भी ये पति बारे पत्नी भक्त भगवान और भक्ति ने कभी निंदादेश नहीं करता है। ऐसा भी समय को भी आ सकता है जो कोई वैष्णव का संसर्ग में आकर के चाहे पति के द्वारा हो या पत्नी के द्वारा हो वो भी भक्त बन सकता है। अगर उसको हमें ये उपदेश दे भाई क्या करने का फालतू है, तुम्हारा पत्नी भक्त ने उसको ताक के दूसरा शादी कर लेना, बात तुम्हारा पति पोति ये नहीं तो उसको ताक कर दूसरा पति कर लेना, ये दोनों गया काम का है, कोई काम का नहीं है, दोनों को भी इष्ट कहा जा सकता है। कि तागने का जो परिभाषा शास्त्र देते हैं उस परिभाषा में दोनों नहीं आता है, इसलिए दोनों का ताक करने कोई विधि नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं है कि आज हम भक्ति कर रहे काल उसमें टिक सकते हैं, आज चलो आज हम भक्ति कर रहे काल हम भी तो छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे लोग को देखा है मैंने, तो मैं अपना मंदिर भी दीक्षा लिया हुआ है, दो चार दिन करेंगे तो छोड़ के अपना मटन मछली सब आराम से दबा खा रहा है। अब किस स्थिति में किस परिस्थिति में कह सकते हो ये इसको तुम ताक दो तुम उसको ताक दो, नहीं कह जा सकता। तागने का अगर सवाल है उस व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना है, हम खोने की देख कर उसको उपदेश नहीं दे सकते हैं, हमारा उपदेश गलत हो सकता है। यहां पर इन्होंने जो बोल रहे हैं यहां भक्ति का सवाल, यहां बोला तुम्हारे साथ जो मुनि का शादी दिया था तो तुम शादी क्यों की ये कर दिया, तो ताक करने विधि क्या कहा, अगर इस प्रकार परिस्थिति हो तो पति पत्नी को ताक कर सकती। यहां पर उमोग ने निंदा किया महाप्रभु का, भगवान को निंदा किया, इसलिए सरम भट्टाचार्य कहा ये भगवान का निंदा करी व्यक्ति मैं तुम ताक दो वो तुम्हारा पति का यज्ञ नहीं है, जो भगवान की निंदा करते हैं। सारम भट्टाचार्य वैदांतिक है, ये कुछ भी बोलेगा क्या, कभी नहीं बोलेगा, शास्त्र जिसका मुंह में विराजित है, बृहस्पति का अवतार है, तब उन्होंने कहा नहीं ये पति का लायक नहीं है। ये तब करने का। और यहाँ पर इन्हें क्या बोला, मैं तुम्हारा साथ शादी दिया था, तुमके उसमें कोई जोड़ी हो, जिस प्रकार व्यक्ति ने शादी दिया था उनको खड़ा करने के लिए जो व्यक्ति लगता था, देखा गया ना अश्विनी कुमार दोनों बाजू से पकड़ कर हाथ में घुसा, तो पत्नी को क्या सुख दे सकते हैं, कोई वैसे ही सुख दे नहीं सकता है। ये परिवार फिर भी सुकन्या ने त्याग नहीं किया था, वो देख करके ताज्जुब हो गया था, इतना सुंदर कहां से, उसको वास्तविक स्थिति तो मालूम है ही नहीं है। अगर वास्तविक स्थिति मालूम होता था, जो मालूम पड़ेगा अभी बाद में, तो खुश हो जाएगा, तब खुश हो जाएगा, अरे वाह क्या अच्छा काम किया, लेकिन अभी मालूम नहीं वास्तविक परिस्थिति क्या है। यही देख करके उन्होंने ऐसा किया, ये जो सतीत्व एक सती की घटना, और इसमें भी शिशी में आता है शायद, जो एक कुष्ठी विप्र को साथ उनका उसका पति कुष्ठी हो गया, मतलब कुष्ठ रोग हो गया था, फिर भी उन्होंने वेश्या का साथ संसर्ग करना चाहा, जो जो वेश्या ना वो सुंदर, उसका साथ हम संसर्ग करना चाहते हैं, कोई स्त्री चाहेगा वेश्या कोई कुष्ठी व्यक्ति हमारे साथ संसर्ग करे, नहीं चाहे कितना भी पैसा दे दो नहीं। लेकिन उन्होंने अपना पोती का खुशी के लिए उन्होंने जाकर वेश्या का सेवा करने लगा, उसको बिना वेतन बिना पगार में उस वेश्या का जो भी कुछ चाहिए, कपड़ा धोना बर्तन धोना घर साफ करना खाना बनाना एक सौ सब बिना पैसा में करने लगा। और बिना पैसा कर एक दिन वो वेश्या भी मन फिर गया, बोले ये हमारा फ्री में इतना सेवा करें, कारण क्या इसको तो पूछूं, जो उसको पूछा तो उन्होंने कहा हमारा पोती कुष्ठी है, वो आपका साथ सहवास करना चाहता है, लेकिन ये असंभव है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहां सेवा कर रहा हूं। इसका भी ताज्जुब हो गया, क्या है एक कुष्ठी के साथ हमारा सहवास करेगा, कैसे कहां से जुट गया है, ये कुछ बोला नहीं, सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने अपना पोती का सुख के लिए, हम निर्घिन्न है समाज में पोती जो है वो हमारा सेवा कर रहा है, इसका वासना हमें पूर्ण करना, उसका सतीत्व देखकर बोला हाँ तुम तुम्हारे पोती को लाओ, मैं उसका सहवास करेंगे, राजी हो गया। इसलिए उसका पातिव्रत धर्म देख करके, जो अपना पोती को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार काम किया, लेकिन जब उस वेश्या का पास लेके गया वो देख करके उनका उसका पति का मन ही फिर गया, बोला नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपना पत्नी से खुश हूं। देखो वेश्या का पास जाने का बाद ही बोल दिया नहीं नहीं हमें आपका साथ सहवास करने को जरूरत नहीं है, हम अपना किस लिए, बोला जी हमारा सुख ले, हमारा पत्नी ने इसका सेवा किया, हम कैसे तुच्छ व्यक्ति हूं जो हमें अपना खुद का सुख के लिए हमारा हमारा जो हादर में जो पतिव्रता है उसको हम इस प्रकार काम में लगाया, बोले हमें ऐसे काम करने जरूरी नहीं, मैं जा रहा हूं रिटर्न, वो वेश्या का प्रणाम करके निकल गया। ये रास्ता में मांडव्य ऋषि का पांव में चरण लग गया, रात में जब रिटर्न आ रहे थे घर में, तो पति तो चल नहीं सकता है, पति ने उसको पिटकुमड़ा बोलते हम लोग बांग्ला में, वो पीठ में लेते हैं ना बच्चा को, या आप गोला में ऐसा हाथ डाल के पीठ में ऐसा करके पकड़ते हैं, तो उसका पत्नी ने उसका पति को कुष्ठी विप्र को इस प्रकार पकड़ के ला रहे थे रात को, तो जब लंबा पाव तो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, अंधकार है पाव लग गया मांडव्य ऋषि का, जानते हो ऋषि लोग कैसे क्रोध क्रोध, हमको कौन लात मारा, तुरंत जाओ, तो जो मालूम पड़ा तो सुबह तुम सुबेरे विधवा हो जाओगे, तुम सूर्य उदित तो नहीं देखोगे, बहुत उन्होंने अभिनय किया, बोला मैं ऐसा गलती से हो गया, ऐसा मुनि खुशी से शांत नहीं हुआ, बोला ठीक है हम भी देखते सूर्य कैसे ऊपर उठता है, हम भी देखेंगे ना सूर्य को कैसे उठता है, वो भी आया और आकर के सूर्य को रोक दिया, इस पर हनुमान ने सूर्य को किधर रखा था, बगल में दबा के, किस समय शक्ति से लक्ष्मण का, बोला सूर्य उठेगा ना, चलो सूर्य धरा आके बगल में दबा लिया, तो जब राम लक्ष्मण जी जीवित होकर उठ गया, जब सब नाच रहे हैं तो हनुमान एक हाथ उठा के नाच रहा है। बोले हनुमान तुम एक हाथ दोनों हाथ के बगल में सूर्यदेव है, वो आगे दो उड़े तो बाहर निकल जाएगा। बोला भाई बाहर निकालो, तो ऐसे का हाथ उठाया तो सूर्य बाहर आया, तो बेला 10 बज गया। तो 10 बज के सूर्य को दबा के रख दिया था हनुमान जी। ये है इसी प्रकार इन्होंने सूर्य को स्तंभित कर दिया। बोला सूर्य उगेगा ही नहीं, देखता हूँ कैसे उगता है। तो पतिव्रता धर्म का कितना पवार है, उगने नहीं दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आया आकर के बोला ठीक कोई बात नहीं, सूर्य उठेगा तुम्हारा पति मर जाएगा, मैं तुरंत बचा दूंगा, मैं तुरंत जीवन दान दे दूंगा, चिंता मत करो, हम ब्रह्मा विष्णु महेश सर त्रिदेव हूं। बोला कोई बात नहीं, चलो सूर्य उठे। सूर्य उठा, पति मर गया, तीनों ने दोबारा उसको काम दान दे दिया, कुष्ठ चला गया। ये पतिव्रता धर्म है। ये पत्नी पुत्र धर्म कैसे कोई मिलता नहीं है, जिन्होंने पत्नी पुत्र इतना किया उसका कुछ मिला आज तक किधर भी नहीं मिला, पति पुत्र धर्म का मिला। तो पत्नी को खुश रखना अति आवश्यक होता है कि वो अगर अच्छी तरीके से रहे तो पूरा गृहस्थ जो है ना मेंटेन बहुत अच्छी तरीके से होता है। और उसको अगर आप परेशानी करोगे तो क्या होगा, घर नरक बन जाएगा। अब शांति कितना भी पैसा लाओ कुछ भी लाओ घर में शांति हो नहीं सकता है। तो पति का जो गृहस्थ बनते हैं उसका पहला कर्तव्य क्या बनता है, पत्नी को खुश रखे। किस लिए, विषय सुख के लिए और परमार्थ सुख के लिए, दोनों के लिए। ऐसा नहीं तो उनको अगर खुश रखोगे तो आपका भजन पूजन में पूरा हेल्प करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ करके देगा वो। नहीं तो क्या होगा, आप अकेला परेशान हो जाओगे, कभी टाइम में खाना नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा, कभी वो नहीं मिलेगा, हो गया आपका। तो उसको खुश रखना आवश्यक होता है। और वो खुश किस में रहता है, खुश रखना महामंत्र क्या है, अलंकार और कपड़ा, ये दो चीज दे दो वो खुश रहेगा। उसके जूता ज्वेलरी बना दो अच्छी से, और साल में 8-10 साड़ी ला के दे दो, खुश, टेंशन नहीं है। ये पत्नी का खुशी करने का महामंत्र है, देखो करके टेंशन नहीं रहेगा। ते यहाँ पर ये पत्नी को ताग व पति को ताग ऐसे विचार दिया गया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर और एक बहुत सारे घटना है अपने शिव सचिन क्या महाभारत में, सोनी का कोप से शिवस्वर लक्ष्मी हरा हो गया, राज्य हरा हो गया। पत्नी एक तरफ चला गया, राजा एक तरफ चला गया, शनि दृष्टि हुआ। तो बाद में इनको भोग करने बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन अपना पतिव्रता धर्म के कारण उसको कोई पर्स में नहीं कर पाया। ऐसा कि अजगर भी खाने के लिए आया, जो बोलता ना उसको क्या नाम इंग्लिश में, एनाकोंडा, इंग्लिश में एनाकोंडा बोलता है, वो भी खा नहीं पाया उसको। पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे थे, ताकत नहीं हुआ एनाकोंडा का खाने के लिए भी, कोई उसको पर्स भी नहीं कर पाया। बाद में मिलन हो गया। ये पतिव्रत धर्म का ऐसा है। आ सावित्री सत्यवान का घटना आता है, जमराज भी पति को ले नहीं ले पाया, क्या बुद्धि है। क्लास में क्या बोर मांगा था सावित्री, बोला हमारे तो कोई लड़का लड़का तो कोई है नहीं है, तो हम पति को अब ले जाओ अच्छा ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा लड़का होने का तो वरदान दे दो, तथा तो सपुत्र तुम्हारा होगा। बोला जमराज जी आप हमारा पति को लेके जा रहे हो और हमें सपुत्र को वर दे दिया, तो हम सपुत्र को दूसरा से करूं। जमराज ने सिर में हाथ रख के बढ़ गया, बोला धन्य पति प्रता, ये लो तुम्हारा पति। इसलिए यहाँ पर राजा सरजाति कह रहे हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, इस मुनि को ताक करके दूसरा का साथ तुमने ब्याह रचा लिया, आज उसको इतना तुम्हें इतना अक्ल भी नहीं आया, पितृकुल और ससुरकुल दोनों कुल को तुम सत्यनाश कर दिया। वे डांटना शुरू किया। तो ये सब देख करके भागवत में जो माता जी लोग व प्रभु जी लोग गृहस्थ जो भक्त है उसको विचार करना चाहिए कि हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत तरह है जो अपना पति पसंद नहीं है छोड़ दिया, जा दोनों दीक्षित जो है छोड़ दिया, क्या परेशानी है? मतलब ये समझता हम दीक्षा ले लें बहुत बड़ा भक्त बन गया। अभी हमको मतलब क्या बोला, सीधा राकाने को मार के पहुंच गया है, व्यवहारिक दृष्टि देखता ही नहीं कोई आज तक। व्यवहारिक दृष्टि में ध्यान रख के काम करना चाहिए। अगर भक्त बन जाओगे कोई भी, चाहे पति बने चाहे पत्नी बने, तो क्या बोलता है, अजात शत्रु वो समता साधुनाम साधु भूषणाम, तुम्हारे पास ये गुण है, तुम त्याग करना का विचार तो पहले करता है, ये गुण तुम में है कि नहीं है? बोले देखो तो साधुनाम जो भूषण है वो साधु का भूषण तुम्हारे में आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, मैं तो दीक्षा ले लिया, क्या करने का है? दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। जब जगन्नाथपुरी में गौड़ीय भक्त लोग गया था, वहां पर प्रश्न किया था पुलिन ग्रामवासी रामानंद नहीं सत्यराज बसु और रामानंद बसु और सत्यराज खां, उस दिनों गृहस्थ थे, सब गृहस्थ ही थे, महापुरुष जितना सारे पार्षद सब गृहस्थ थे, प्राय मतलब सब छह सन्यासी थे मिला जुला कर। उस समय महापुरुष जिस समय विराजित थे उस समय छह सन्यासी था महापुरुष का, बाकी सब ग्रस्त भक्त। तुमने आके पूछा गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? जो गृहस्थ भक्त उसका कर्तव्य क्या है? तो महापुरुष ने कहा कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, बाकी कुछ करने का जरूरी नहीं है, सीधा बोल दिया। बोला ठीक है, कृष्ण नाम संकीर्तन समझ गया, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीर्तन करने का वो तो समझ गया, आप कृष्ण सेवा वो भी समझ गया अर्चन करने का है, लेकिन वैष्णव सेवा समझ नहीं पाया। वैष्णव सेवा कैसा है? तो महाप्रभु ने कहा जार मुखे सुने एक कृष्ण नाम सही तो वैष्णव तारे करो सम्मान। बोले वैष्णव है जिसका मुंह में एक बार कृष्ण नाम स्मरण करता हूं ये वैष्णव है, उनको तुम सेवा करो। वैष्णव से महाप्रभु बोल दिया। अभी अमृत भाव भाष्य आ रहा है इसके पीछे भक्तों ठाकुर का, दीक्षा लेने से वैष्णव नहीं हो जाता है, ये बोलो, ये दीक्षा ले लिया वैष्णव हो गया? नहीं, दीक्षा नहीं भी लिया लेकिन एक बार भी कृष्ण नाम निरपराध में उच्चारण वो वैष्णव है। दीक्षा लेने के बाद अभी तक जो अपराध रही जवाब है एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण नहीं किया वो वैष्णव नहीं है, ये परिभाषा दिया अमृत प्रभाष्य में। विचार करके देखना चाहिए ये वैष्णव सेवा मतलब क्या है, गृहस्थ वैष्णव सेवा करे किस प्रकार, कम किस प्रकार वैष्णव का सेवा, अपराध रहित तो होकर के अगर कोई कृष्ण नाम उच्चारण किया है तो एवं भी जो वैष्णव को गृहस्थ का कर्तव्य सेवा करना चाहिए, चाहे दीक्षा ले बा दीक्षा ना ले, ये परिभाषा दिया है, ये गृहस्थ का कर्तव्य है जिसका उपवास में अनुमोदन किया है। किसने जैसे गृतंग मन साद्रिय तो उसको मन में आदर करो, किसने गिरी वाक्य जिसका जो उच्चारण किया है उसको तुम आदर करो। उच्चारण क्या मतलब, रास्ते में बोल रहे हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई बोलता हरे कृष्ण प्रभु जी, वही बोलता हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलता है कि नहीं बोलता है, तो सब तो हरे कृष्ण बोल रहा है। विचार करने जाओ तो क्या सब वैष्णव हो गया ना, हो गया। यहाँ विचार करने कैसे विचार करोगे जिसमें अपराध है कि नहीं, हरे कृष्ण में अपराध है क्या? नहीं, नाम में कोई अपराध नहीं है, अपराध किस में है? व्यक्ति में। जो हरे कृष्ण हमको बोल रहा है, चाहे आप बोलो चाहे मैं बोलूं, वो अगर देसी व्यक्ति है, किसमें? भगवान में, भक्तों में, भक्ति में, जड़ो देह द्रवीण पाषण मध्य, एक श्लोक है, तो उसे अपराधी कह सकते हैं। चाहे कितना भी कितना बार भी देख के हरे कृष्ण क्यों ना बोले, मुख में राम राम भूगोल में छुरी, ऐसा व्यक्ति, ये भी क्या है? तो हमें किसे किस जगह में ताक करना चाहिए और किस जगह में ताक नहीं करना चाहिए, इसके लिए महाभारत, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, मनुसंहिता अच्छा से पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा प्रमाण स्वरूप। ताकि अपना मनमोर दो दिन का लहर चौहर बोलता है ना, दो दिन का लहर चौहर, तीसरा दिन खिचड़ी, तीनों कितना घितों के दो चार पैसा वैसा ला कर आराम छप्पन वो खा लिया, तीसरा दिन भीख मांगने निकल गया, कोई जरूरी नहीं है। शास्त्रों का जो परिभाषा है, उस परिभाषा का अच्छी तरीके से समझना चाहिए, उसका बाद ही हमें कोई कदम, नहीं तो ये सरजाती जी सिद्धांत रहे ना, तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा शादी एक बुढ़ापा का साथ हो गया और तुम तुम्हारा पति को ताक कर दिया, तुमने सोचा नहीं, गलती तुमने किया, तुम अगर एक गलती नहीं कर तुम्हारा साथ शादी इसका नहीं होता था। हम तो आते उपवन में घूमने के लिए, तुमने इसे गलती क्यों किया? तो तुम्हारा गलती क्या, तुम्हारे दंड है, इसको तुम भुगतो, कहने का मतलब यही है। नहीं तो मैं थोड़ी चाहता था, मैं एक राजा हूं, अरे बूढ़ा का साथ तुम्हारा शादी दे दूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करता, लेकिन तुमने गलती किया जिसका वजह से तुम्हें ये काम करना पड़ा, ये तुम भुगतो, लेकिन तुमने एक एक क्या कर दिया, तुमको बूढ़ा को छोड़कर जवान को क्यों वरण कर लिया, ये प्रॉब्लम। इसलिए सरजाती को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से किस परिस्थिति में पति पत्नी को ताक करे, पत्नी पति को ताक करे, वो परिभाषा शास्त्र में दिया रहता है। हरे कृष्ण मंचा कल्पतरु बस की भाषण पावन वैष्णवे भो नमो नमः।